नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। केंद्र ने वर्ष 2024-25 के लिए मनरेगा कामगारों का संशोधित पारिश्रमिक अधिसूचित किया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय तंत्र की 29वीं बैठक पेइचिंग में संपन्न हुई। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा 2 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को पीएचडी में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा के स्थान पर नेट स्कोर का उपयोग करने को कहा। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत संशोधित पारिश्रमिक के बारे में अधिसूचना जारी की है। हरियाणा में अकुशल मजदूर को प्रतिदिन 374 रूपये, गोवा में 356, कर्नाटक में 349, केरल में 346 और पंजाब में 322 रूपये की मजदूरी दी जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि अधिसूचना 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी दर इससे पहले पिछले वर्ष मार्च में संशोधित हुई थी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण में 12 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों, केंद्र शासित प्रदेशों और बाहरी मणिपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के शेष भागों में मतदान होगा। नामांकन 4 अप्रैल तक भरे जा सकते हैं और 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नामांकन पत्रों की जांच 6 अप्रैल को होगी और अन्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में नामांकन पत्रों की जांच 5 अप्रैल को की जाएगी। पहले चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज हो रही है। इस चरण में केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 8-8, मध्य प्रदेश में 7, असम और बिहार में 5-5 सीटों तथा पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटों के साथ ही मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में 1-1 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। असम में पहले चरण में 5 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण के लिए 38 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने असम के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, पूर्व राज्य मंत्री और विधानसभा सदस्य रंजीत दत्ता को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और पूर्व विधानसभा सदस्य रोसेलिना तिर्की ने भी नामांकन पत्र भरा है। असम जाति परिषद के अध्यक्ष लुरिन ज्योति गोगोई डिब्रूगढ़ से श्री सर्बानंद सोनोवाल के खिलाफ चुनाव मैदान में होंगे। अरुणाचल प्रदेश में एक साथ होने वाले 2 लोकसभा और 60 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की अवधि कल समाप्त हो गई। दोनों संसदीय सीटों के लिए 15 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। अरुणाचल पश्चिम सीट के लिए 3 राजनीतिक दलों और 5 निर्दलीय उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। अरुणाचल पूर्व सीट के लिए कुल 7 नामांकन दाखिल किए गए हैं, जिनमें से 3 राजनीतिक दलों के और 4 स्वतंत्र उम्मीदवार हैं। वहीं विधानसभा की 60 सीटों के लिए 197 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए हैं। राजस्थान में दूसरे चरण के चुनाव के तहत 13 लोकसभा सीटों टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और भारा जालौवाड़ सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बागेदौरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, जहां दूसरे चरण के साथ ही उपचुनाव होगा। इस बीच पहले चरण के चुनाव के लिए राज्य की 12 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया कल पूरी हो गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
पहले चरण के चुनाव के लिए 12 लोकसभा क्षेत्रों में कुल 131 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा 17 प्रत्याशियों ने पर्चे भरे हैं, जबकि करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर सिर्फ 4 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। चुरू, सीकर और जयपुर लोकसभा सीटों पर भी 16-16 उम्मीदवारों की ओर से नामांकन भरे गए हैं। आज नामांकन पत्रों की जांच होगी। इस बीच राज्य में चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। उम्मीदवारों ने प्रचार के लिए अपने कार्यालय स्थापित कर लिए हैं। वहीं चुनाव प्रक्रिया पर निगरानी के लिए निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षकों ने भी लोकसभा क्षेत्रों में पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
हिमाचल प्रदेश में कुल 4 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिनमें मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा और शिमला संसदीय क्षेत्र शामिल हैं। प्रदेश में लोकसभा चुनाव सहित विधानसभा की 6 सीटों के लिए उपचुनाव 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को होंगे। इन चुनावों के लिए 7 मई को अधिसूचना जारी होगी और 14 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे।
हिमाचल प्रदेश के 4 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों सहित 6 विधानसभा क्षेत्रों में भी 1 जून को एक ही चरण में मतदान होगा। राज्य के सभी 4 संसदीय क्षेत्रों सहित विधानसभा की 6 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी अब तक किसी भी उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं कर पाई है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री व मौजूदा 4 बार के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर को 5वीं बार चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं मंडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से मशहूर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को पार्टी प्रत्याशी बनाया है। इसी तरह शिमला लोकसभा क्षेत्र से मौजूदा सांसद सुरेश कश्यप, जबकि कांगड़ा से डॉक्टर राजीव भारद्वाज भाजपा प्रत्याशी बनाए गए हैं। गौरतलब है कि हिमाचल में बीते 27 फरवरी को राज्यसभा की 1 सीट के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी के 6 विधायकों सहित 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा के विजयी उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट दिया था, जिसके चलते प्रदेश में कांग्रेस सरकार पर संकट आ गया था। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि प्रदेश में चुनाव के लिए कुल 7,990 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी तक 56,38,000 मतदाता पंजीकृत हैं और मतदाता अपना पंजीकरण 4 मई 2024 तक करवा सकते हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
कर्नाटक में लोकसभा चुनावों के लिए मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्य निर्वाचन अधिकारी लगातार प्रयासरत हैं। मतदान साक्षरता क्लब कॉलेज में विद्यार्थियों और आवासीय कल्याण एसोसिएशन को मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके अलावा रैली और रोड शो भी किए जा रहे हैं। कर्नाटक के अपर मुख्य चुनाव अधिकारी एम कुर्माराव ने बेंगलुरु में आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या बढ़ाए जाने के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी दी। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में सामान्य से भी कम मतदान हुआ था।
For Karnataka, in 2019 Lok Sabha elections, the voter turnout is 68.81. We are trying to improve that voter turnout this time in this 2024 elections. Polling station level, we have formulated this time micro plan. Like for that, we have to identify first the reasons for low voter turnout. It can be due to urban problems. It may be related to some kind of migration. We will try to give all the emphasis about this assured minimum facilities.
लद्दाख में लेह जिले में आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान प्रक्रिया में अधिक लोगों की भागीदारी के लिए गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर कई प्रयास हो रहे हैं। लेह में कल चुनाव अधिकारी संतोष सुखदेव की अध्यक्षता में नोडल अधिकारियों को उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी देने के लिए बैठक आयोजित की गई। उन्होंने उपमंडल मजिस्ट्रेट और तहसीलदार को गांव, ब्लॉक तथा जिला स्तर पर मतदाता शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम और सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाने तथा उन मुद्दों की पहचान करने का निर्देश दिया जो लेह में कम मतदान का कारण बन रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा से सैनिकों को हटाने और शेष मुद्दों के समाधान के बारे में विचार विमर्श किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत चीन सीमा विवाद परामर्श और समन्वय तंत्र की 19वीं बैठक कल पेइचिंग में संपन्न हुई। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने राजनयिक और सैन्य माध्यमों से नियमित संपर्क बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के उपायों पर विचार विमर्श किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशियाई मामलों के संयुक्त सचिव ने किया था। सैन्य कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हो गया है। ये सम्मेलन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से हो रहा है। इस आयोजन के माध्यम से भारतीय सेना का शीर्ष नेतृत्व प्रमुख मुद्दों पर प्रभावी ढंग से विचार विमर्श करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक को संबोधित करेंगे और 2 अप्रैल को वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से बातचीत करेंगे। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे आज कमान मुख्यालयों से सम्मेलन में भाग ले रहे सैन्य कमांडरों से वर्चुअली संवाद करेंगे। बातचीत में सेना के सम्मुख आने वाली समस्याओं और सैनिकों के हित से संबंधित मुद्दों पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। देश के सभी विश्वविद्यालय शिक्षा सत्र 2024-25 से पीएचडी में प्रवेश के लिए अलग अलग प्रवेश परीक्षाओं के स्थान पर राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के अंतर्गत प्राप्त किए गए एनईटी स्कोर का उपयोग करेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शिक्षा सत्र 2024-25 से पीएचडी में प्रवेश के लिए विभिन्न शिक्षण संस्थानों द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षाओं के स्थान पर राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट का स्कोर उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जून 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया की जानकारी अगले सप्ताह उपलब्ध हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी इस पर काम कर रही है। आकाशवाणी से बातचीत में शिक्षाविद डॉक्टर संत कुमार चौधरी ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के फैसले से विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा।
यूजीसी ने रिसेंटली अपने एक डिसीजन में उन्होंने जो निर्णय लिया है कि जो नेट क्वालिफाइड हैं उनको पीएचडी के लिए वेटेज मिलेगा, उन्हें डायरेक्ट एडमिशन मिल पाएगा, उनके जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स होंगे उनका जो आधार होगा वो नेट क्वालिफिकेशन के पर आधारित होगा। पहले पीएचडी में एडमिशन के लिए उन्हें यूनिवर्सिटी अलग अलग से अनेकों एग्जाम कंडक्ट करती थी, जिससे ये सिंप्लीफाई करते हुए यूजीसी ने जो डिसीजन लिया है कि नेट क्वालिफाइड लोगों के लिए पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन दिया जा सकता है, ये एलिजिबल है, ये स्वागत योग्य है।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष की संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस के दूसरे सत्र के परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केंद्र वाले शहर आवंटन की अग्रिम सूचना जारी कर दी है। जेईई मेंस का दूसरा सत्र 4 से 12 अप्रैल तक 319 शहरों में विभिन्न केंद्रों पर होगा। इनमें 22 शहर विदेशों के भी हैं। परीक्षा प्रत्येक दिन दो शिफ्टों में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दिन के 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। 12 अप्रैल की परीक्षा केवल सुबह की शिफ्ट में ही होगी। परीक्षार्थी एनटीए की वेबसाइट पर अपनी आवेदन संख्या और जन्मतिथि डालकर परीक्षा केंद्र से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। श्री कुलेबा विदेश मंत्री और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ आधिकारिक बैठकों सहित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि दोनों पक्ष क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय साझेदारी तथा सहयोग के मामलों पर आपसी चर्चा करेंगे। पूरे विश्व में 2022 में लगभग 1 अरब 5 करोड़ मीट्रिक टन खाद्यान्न की बर्बादी हुई है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार यह संबंधित वर्ष में कुल उत्पादित अनाज का लगभग 19% हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम की खाद्यान्न बर्बादी सूचकांक रिपोर्ट में वर्ष 2030 तक ये बर्बादी रोकने में विभिन्न देशों की प्रगति का आकलन किया है। संयुक्त राष्ट्र ने कल कहा कि इस सूचकांक में शामिल देशों की संख्या वर्ष 2021 में जारी पहली रिपोर्ट में शामिल देशों से दोगुनी हो गई है। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में 931 अरब मीट्रिक टन खाद्यान्न की बर्बादी हुई थी। शोधकर्ताओं ने ऐसा पाया है कि प्रत्येक व्यक्ति एक वर्ष में लगभग 79 किलोग्राम खाद्यान्न बर्बाद करता है। इसका लगभग 60% हिस्सा घरेलू स्तर पर, 28% रेस्तरां जैसी विभिन्न खाद्य सेवाओं और लगभग 12% हिस्सा खुदरा बिक्री स्तर पर बर्बाद होता है। ये रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जब पूरी दुनिया में 78 करोड़ 30 लाख लोग भूख से जूझ रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। उधर मियामी ओपन टेनिस प्रतियोगिता के डबल्स सेमीफाइनल में आज रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडन का सामना स्पेन के मार्सल गेनोलर्स और अर्जेंटीना के होरोसिए जेबलॉस की जोड़ी से होगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात में 10:30 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने वर्ष 2024-25 के लिए मनरेगा कामगारों का संशोधित पारिश्रमिक अधिसूचित किया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय तंत्र की 29वीं बैठक पेइचिंग में संपन्न हुई। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा 2 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को पीएचडी में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा के स्थान पर नेट स्कोर का उपयोग करने के निर्देश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।